أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج نومبر 1989 کی 23 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ السجدہ کی آیت 5 سے ہو رہا ہے، 3:2:5. جیسا کہ میں نے سابقہ درس کے آخر میں عرض کیا تھا کہ یہ آیت اور اس کے ساتھ ایک اگلی آیت ہے ساتھ، میں نے کہا تھا کہ یوں تو قرآن کریم کی کون سی آیت ہے کہ جو دلیل مرتبت نہیں، لیکن بعض آیات میں بڑے بلند حقائق کو سمٹا کے چند لفظوں میں مرتکز کر دیا جاتا ہے، اور اس اعتبار سے ان آیات کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے. یہ آیت جو پہلی میرے سامنے آ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ارباب فکر و نظر کے لیے اور بالخصوص مغرب کے سائنٹسٹ ان کے لیے اس بات کے ثابت کرنے کے لیے یا ثابت ہونے کے لیے کہ یہ قرآن کسی انسانی فکر کی تخلیق نہیں، یہ واقعی اس کا سرچشمہ ماورائے ادراک انسانی ہے، یہ ایک ہی آیت کافی ہو سکتی ہے. جس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے 1400 سال پہلے، اس زمانے میں عرب میں ہی نہیں، ساری دنیا کے دانشگروں کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی جو اس آیت میں کہی گئی ہے. اور 1400 سال پہلے ہی نہیں، ابھی 18ویں صدی تک ہی دنیا میں کوئی انسانی فکر یہ بات کہہ سکتی تو ایک طرف تصور میں بھی نہیں لا سکتی. اور اس کے بعد جب سائنس کے انکشافات ہوئے ہیں تو یہ آیت ایک حقیقت ثابتہ بن کر سامنے آ گئی ہے. 1400 سال پہلے کی کہی ہوئی ایک بات، آج جو سائنس کے انکشافات ہیں وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ بات یہی تھی جو اس نے کہی ہے. اور یہی وجہ ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم حتیٰ یتبین لہم انہ الحق. ہم عالم انسانی میں اور خارجی کائنات میں اپنی چھپی ہوئی حقیقتوں کو بے نقاب کرتے چلے جائیں گے، اور ہر حقیقت جو بے نقاب ہو کے سامنے آئے گی وہ اس امر کی کا ثبوت ہوگی کہ قرآن واقعی حقیقت پر مبنی ہے. تو اس کے مبنی پر حقیقت ہونے کے لیے یا یہ سامنے آنے کے لیے یہ بات انفس اور آفاق کے اندر جو حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں ان کا منکشف ہونا، ان کا ڈسکور ہونا، ان کا بے نقاب ہونا، یہ بڑی بنیادی شرط ہے. قرآن نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کتاب کے حقائق اس طرح سے واضح ہو کے یہ ثابت کریں گے کہ واقعی یہ ایک حقیقت افسانہ نہیں ہے، فکر انسانی کی تخلیق نہیں ہے. اور اس کا ذریعہ بتایا ہے انفس اور آفاق میں چھپی ہوئی حقیقتوں کا بے نقاب ہونا. کسی کو تو آج آفاق کی دنیا میں کم از کم اسی کو تو آپ سائنٹیفک ڈسکوری کہہ لیجیے. سائنس ان حقیقتوں کو ایجاد نہیں کرتی، وہ ڈسکور کرتی ہے، یعنی اس کے اوپر جو پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے صرف اس کو اٹھا دیتی ہے. سلیمان کے الفاظ میں وہ کہتا ہے، بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، وہ کہتا ہے ہم کتاب فطرت کو لکھتے نہیں ہیں، ہم کتاب فطرت کو پڑھتے ہیں. 1400 سال پہلے ہی نہیں، اس سے بھی بہت پہلے تک کائنات کی تخلیق کے متعلق مذہبی کتابوں میں لیجیے، تورات ہی کو یہ پوزیشن حاصل ہے کہ وہ بہت قدیمی ہے، اور مذاہب کی کتابوں کو بھی لیجیے، ان سب میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کی جاتی ہے تخلیق کے خدا نے، جیسا ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں کن کہا اور یہ کائنات وجود میں آ گئی. یعنی جس طرح سے جو چیزیں آج ہمیں نظر آتی ہیں، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ درخت، یہ مویشی، یہ حیوانات، بلکہ انسان بھی، یعنی خدا نے ایک حکم دیا اور یہ سب چیزیں اسی شکل میں پیدا ہو گئی. और इसी शक्ल में पहले दिन से आज तक उसी तरह से चली आ रही है। ये था तखलीक कायनात का तसव्वुर। 1400 साल पहले ही नहीं, 200-300 साल पहले तक कि हर शायद जिस शक्ल में सा... मैंने पिछली दफा भी अर्ज किया था कि बड़ी मुश्किल थी है आज, मैं कोशिश करूंगा कि आम फैम अल्फाज में इसे पेश करूं, आप भी इस पे गौर करते जाइए साथ के साथ। मुझे अफसोस ये है बार बार कहने के बावजूद कुरान के नुस्खे आपके सामने नहीं होते, ये अल्फाज देखने नहायत जरूरी हैं। और अगर दोनों जो हमारे यहाँ जराया अब्लाग हैं, कान और आंखें, दो इकट्ठी हो जाएं, तो इनका असर बहुत बड़ा पड़ता है जेन की ऊपर, याद रखिए। आप सिर्फ कानों से सुनते हैं, आंखों से कुरान को नहीं देखते। मैंने अर्ज किया है कि कुछ 200 साल पहले तक भी खुद यूरोप के साइंटिस्ट भी थे, साइंटिस्ट उस जमाने में कम होते थे, मुकद्दर ही थे, तसव्वुर यही था कि जो दुनिया में जितनी चीजें मौजूद हैं वो इसी शक्ल में सामने आ गई। खुद आदमी के मुतल्लिक तो ये बहरहाल तौरात में मौजूद है, दुनिया की हर किताब में मौजूद है कि खुदा ने आदम को पहले आदमी को पैदा कर दिया, एक आदमी, और फिर उसके बाद उसकी पसीने से औरत को पैदा कर दिया। यानी आदमी भी और मर्द भी औरत भी जैसे आज नजर आते हैं इसी तरह से पैदा कर दिए। सारी कायनात के मुतल्लिक ये चीज चली आ रही थी कि ये इसी तरह से पहले दिन पहले हुक्म के साथ उसी शक्ल में वजूद में ये चीजें आ गई जिस शक्ल में ये आज हमारे सामने। इसे जहन में रखिए, मुसलमा के कल तक ये मुसलमा था मजाहब की दुनिया का भी और इल्म की दुनिया का भी, फिक्र की दुनिया का भी। तो 200 साल पहले इसके ऊपर तहकीकात होनी शुरू हुई, उस तफसील में तो मैं नहीं जा सकूंगा, बात यही लंबी हो जाएगी। डिस्कवर ये बात हुई जिसे थियरी ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं, नजरियाए इर्तका कहते हैं। साइंस ने ये डिस्कवर किया कि ये जो भी खादी कायनात इंसानों समेत ये पहले दिन से इसी शक्ल में सामने नहीं आ गई थी। हर शय का आगाज जिसे आप कहेंगे बड़ी क्रूर शक्ल में, बड़े पस्त दर्जे में, उसकी इब्तदा इस तरह से हुई थी। फिर वहां से ये चीज, हर शय जिसकी इब्तदा इस तरह के नुक्ता से हुई थी, वो हजारों लाखों साल की मंजिलें तय करती हुई, इवॉल्व करती हुई, इसे एवोल्यूशन कहते इस तरह। ये बाई रेवोल्यूशन नहीं तखलीक हुई, वो कहते बाई एवोल्यूशन हुई है। यानी एवोल्यूशन के माने ये होते हैं, इवॉल्व होने के माने होते हैं कि एक शय जो पस्त दर्जे की है उसमें से कोई दूसरी शय उससे बेहतर निकले और वो आगे बढ़े, और इस तरह से रफ्ता रफ्ता बतदरीज मुख्तलिफ मनाजम तय करते हुए वो आगे पहुंचे। चुनाचे ये जो थी थियरी ऑफ एवोल्यूशन, वैसे तो डार्विन की तरफ मंसूब की जाती है, उससे पहले भी थी और उसके साथी भी थे। इसके ऊपर इस 200 साल में इतना काम हुआ है कि एक एक शय के मुतल्लिक खुद ये जो हमारे यहाँ की महसूस कायनात जिसे हम ये जमीन और ये अजराम फलकी कहते हैं, ये खारजी कायनात कहते हैं, एक तरफ इसके मुतल्लिक यह तहकीक हुई। मैं कभी आऊंगा कि इसके मुतल्लिक भी तहकीक जो हुई है साइंटिस्ट की, किस तरह से कुरान की एक एक आयत उसकी या वो कुरान की एक एक आयत की तस्दीक की जाती है। आज वो असूल हमारे सामने आता है जो इन्होंने बयान किया कि हर शय की इब्तदा आगाज बहुत तस्तरीन नुक्ते से होता है, हुआ है, और फिर वो शय मुख्तलिफ मराहल में से गुजरती, हजार हजार साल का एक एक मरहला तय करती, इवॉल्व करती हुई, आगे बढ़ती हुई इस मकाम तक पहुंची है जो हमारे सामने है, जो हमें अब नजर आ रहा है। यूं बतदरीज यहां तक ये शय पहुंची है, इस तरह से ये शय बनी है। पहले इस दिन बाई रेवोल्यूशन वजूद में इसी तरह से नहीं आ गई थी। पहला नुक्ता आगाज कैसे हुआ, इसके मुतालिक तो न साइंस कुछ कह सकी है न कह सकेगी, लेकिन यहाँ से साइंटिस्ट ने शुरू की है बात हर मौजूद शय के मुतालिक के उसका नुक्ता आगाज जिसको वो अब तक डिस्कवर कर सके हैं वो क्या था, और फिर वो मुख्तलिफ मराहल में से जो गुजरे हैं उन मराहल को भी डिस्कवर करते गए हैं। वहां तो एक एक शोबे के मुतालिक किस किस्म की रिसर्च हो रही है ना। आप हैरान होंगे कि एक एक साइंटिस्ट की पूरी उम्र एक कीड़े की जिंदगी के मुतालिक रिसर्च करने से गुजर जाती है, एक एक पत्ते के ऊपर गुजर जाती है उनकी जिंदगी। फलकियात वाले अलग हैं, जमीन वाले अलग हैं, जिंदगी हयात या लाइफ जिसे कहते हैं बायोलॉजी वाले वो अलग हैं, शोबे मौजूद है उसमें लगे हुए हैं ये तय कर किसी चीज के ऊपर के किसी शय का नुकता या आगाज क्या था और किन मराहल में से वो गुजरी और उसके बाद किस तरह से वजूद में आई। ये कल की बात, हम बात कर रहे हैं 1400 साल पहले जब सारी दुनिया में वो तसव्वुर था जो मैंने अभी अर्ज किया कि ये सारी कायनात हर शय आदम का बस खुदा ने हुक्म दिया और इसी शक्ल में ये वजूद में आई। आपको याद होगा और मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ये याद रखने की बातें हैं, मैं सुन के भुला देने की नहीं है। कि कुरान ने एक आलम अमर कहा है, एक आलम खलक कहा, आपको याद होगा मैंने बताया था कि एक बहुत बड़ा मुफक्कर है यूरोप का प्रिंजल पैटिसन, उसने ये कहा था कि अरबी जुबान हमारे मुकाबले में बड़ी एडवांटेज पोजीशन में है, बल्कि वो तो मुसलमानों से कहता था कि जिस जुबान में उनकी किताब है उस एतबार से ये कौम हमारे मुकाबले में बड़ी एडवांटेज पोजीशन है कि हमारी जुबान में क्रिएशन या तखलीक के लिए एक ही लफ्ज है क्रिएशन, इनके यहाँ इसके लिए दो लफ्ज हैं आलम अमर है और आलम खल्क है। और उसने कहा कि ये बहुत बड़ी चीज है, खुद ये जुबान बता रही है कि इन लोगों का जेन कहाँ तक पहुंचा हुआ था। कुरान ने ये दोनों लफ्ज क्यों इस्तेमाल किए हैं, आलम अमर है। अब मिसाल तो इंसानों की दी जाएगी ना, खुदा के मुतालिक हम ये नहीं कहेंगे कि इसके जहन में ये तसव्वुर था ये इमेजिनेशन था, समझने के लिए तो बात इंसानों की है ना। कोई चीज जो बनानी हो, मसलन किसी आर्किटेक्ट ने भी बनानी हो, किसी इंजीनियर ने कोई मशीन बनानी हो, जो चीज भी उसने तख्लीक करनी हो, पहले उसका जहन में एक तसव्वुर आता है, एक नजरिया आता है, एक नक्शा आता है, एक स्कीम होती है, वो फिल वाकया मौजूद नहीं होती, महसूस शक्ल उसकी नहीं होती, लेकिन उसकी तमाम खतूत, उसका नक्शा, वो स्कीम, वो सारी उस खालिक के जहन में होती है, उस आर्किटेक्ट के, उस इंजीनियर के। अब उसके बाद जब वो ये चीज मुकम्मल करता है और फिर वो ड्राइंग के एतबार से कागज पर भी उसको ले आता है अपनी स्कीम को, फिर उसके बाद जब वो उसको तामीर शुरू करता है तो यहाँ से वो तखलीक का मरहला शुरू होता है, यानी किसी स्कीम का महसूस शक्ल में आने का जो मरहला है वो है जिसे तखलीक कहा जाएगा, खलक कहा जाएगा। पहला हिस्सा जो उसका है वो आलम अमर है, और जाहिर है कि कोई चीज भी जो कायदे कानून के मुताबिक वजूद में आएगी उसके लिए ये आलम अमर स्कीम का जो आलम है, पहले नक्शा बनाने का जो मरहला है, ये कितना अहम मरहला है। और यहीं से ये बात सामने आ जाएगी कि ये जो कहा जाता है कि ये बाई चांस किसी तरह से ये आ गई वजूद में कायनात, तो जो चीज इस तरह से किसी स्कीम के मातहत सूफी समझे तसव्वुर के मुताबिक तखलीक या महसूस शक्ल में सामने आए वो बाई चांस उसको नहीं कहा जा सकता। तो पहली चीज तो यही जो है कुरान ने इसको काट दिया, इसलिए कि तेरा पता ना पाए तो लाचार क्या करें। बिगनिंग जो है किसी चीज का जो अदम से वजूद में आती है, कैसे आती है, देने इंसानी इसके मुताबिक कुछ कह ही नहीं सकता। इसलिए उन लोगों ने यह कहा कि somehow, यही है साइंस का मुद्दा आ गया somehow, तो किसी न किसी तरह से ये वजूद में आ गई। ठीक है, कुरान ये किसी न किसी तरह से नहीं कहता, इसलिए कि इसके यहाँ आलम अमर है एक, वो कहता है यूं ही बाई चांस वजूद में नहीं आ गई, इसके खालिक ने इसके मुतल्लक पहले एक स्कीम मुरतब की, एक रवो था, एक नजरिया था, एक नक्शा था, पूरा डिजाइन था वो उसके सामने था, फिर उसके मुताबिक उसने इसकी इब्तदा की तफरीक की, तो बाई चांस नहीं हुई ये बात, उस स्कीम के मुताबिक हुई। अब आइए इसके बाद हम इस मुकाम पे आज खड़े हैं, इल्मे इंसानी इस मुकाम तक आज पहुंचा है। अब आइए 1400 साल पहले जो किताब ने कहा, पहली आयत थी क्या थी, अल्लाह अल्लज़ी खलक़ समावात वल अर्ज़ वमा बैनहुम, तखलीक अर्ज़ व समावात और इसके दरमियान जो कुछ है। अगली आयत है कि ये जो तखलीक फलाका है, पैदा किया खुदा ने, तो क्या ये उसी तरह से ही है कि उसने कुन कह दिया और हर शय अपनी इस शक्ल में जिसमें आज मौजूद है तो वजूद में आ गई, हालांकि जो कहा नहीं, यानी खलाका के बाद ये बात कहनी जो आगे कही है, फौरन कहा कि ये तखलीक तो वो मरहला है जिसमें कोई शय मासूस शक्ल पर तुम्हारे सामने आती है, बात इससे बहुत पहले शुरू होती है, और यहां आई वो आयत जो मैंने अर्ज किया, इस तखलीक के लिए कहा कि खुदा करता क्या है, किया उसने क्या था और कर रहा क्या है, क्योंकि वो आज भी इससे तो गालिब हासिल नहीं, ये वीदो फिर कल के माजिशा इसमें तो इजाफे होते रहते हैं, कैसे वजूद में आई और वो करता क्या, रीजा ने माने एक एक लफ्ज पे गौर कीजिएगा, एक आज फिर कहूंगा कि आपके सामने लिखा मुझसे होते, वो कहता है युदब्बिरुल अम्रा मिनस समाए इलाल अर्ज सुम्मा यारजो इलैह फी यौमिन काना मिक़दारुहु अल्फ सनतिन मिम्मा तउद्दून जो दब्बरुल अमर, अमर को मैंने बता दिया आपको, स्कीम एक मुरतब करता है। अब पहला लफ्ज है जो दब्बरुल अमर, तदब्बुर का लफ्ज तो आपने सुना ही होगा, तदबीर भी आपने सुना ही होगा, गौर व फिक्र आम इसके माने किए जाते हैं, लेकिन मैंने अर्ज किया ना कि कुरान करीम को अरबी जुबान तो बड़ी वसी जुबान है, उसकी वसतों के अंदर से वो एक लफ्ज का इंतखाब करता है और खुद उस लफ्ज का इंतखाब ये बताता है कि ये वाकई कोई इंसानों से बुलंद फिक्र है कि जिसने इन सैकड़ों लफ्जों से इस मकसद के लिए एक खास लफ्ज है उसका इंतखाब किया है। गौर फिक्र के लिए अरबी जुबान में हजारों अल्फाज, कुरान करीम में इसके लिए मुतअद्दिद अल्फाज, फिक्र और गौर और अकल और शऊर और इल्म और तमाम चीजें हैं, यहां तदब्बुर का लफ्ज है, युदब्बिर होना मैं सुनिए और झूम जाइए अरबी जुबान की वसत पे और फिर कुरान के इंतहा पे। ये दाल बे रे जो मादा है इनका, इसके माने होते हैं किसी शय का आखिरी हिस्सा, अंजाम किसी शय का आखिर में जो चीज आए, तदब्बुर कहते हैं किसी शय के अखीर के नुक्ता तस्वीर तक जो उसकी पोजीशन है उसको सामने रख के शुरू से बात करना, एक दब्जे का तदब्बुर। गौर करते हैं कुरान छह क्या है अभी जाने मान, ये किताबें नहीं, चीजें दीगर बस ये तदब्बुर से बात सारी हद हो गई। देखना ये कि अनजाने कार इस कहने बनना क्या है, और वही स्कीम कामयाब हो सकती है वीजा निर्माण जिसने स्कीम बनाने वाला ये देखे कि आखिर में इसने बनना क्या है। यानी वो इब्तदार में ना सोचे बल्कि वो पहले ये देखे कि इसमें आखरुल अमर बनना क्या है, उसे सामने रख के और फिर ये स्कीम जो है इसको चलाए। वो उसका जो अल अमर है, उसकी जो स्कीम है तखलीक कायनात की, वो उसके आखिरी नुक्ता तकमील को सामने रख के तो उसकी इब्तदा करता है। अमर तो होता है समान, समा और अर्ज ये देखिए, ये इस समा के माने आसमान, अर्ज के माने जमीन हम लेते हैं, ये भी माने हैं इसके, लेकिन बुनियादी तौर पर समा बुलंदी को कहते हैं, अर्ज पस्ती को कहते हैं। कहा कि वो पहले एक तदबीर करता है, स्कीम मुकम्मल करता है, फिर उसका आगाज वो स्कीम जो है वो बुलंदी के ऊपर तय हुई हुई होती है, लेकिन जब उसको तखलीक में वो लाना चाहता है, उसका आगाज करता है तखलीक का, कि अमर अपना मासूस शक्ल में सामने उसके आ जाए, जब उसकी तखलीक की इब्तदा करता है तो वो अमर जो समा की बुलंदियों में तय हुई थी स्कीम, उसको अरज से शुरू करता है, पस्तरीन नुक्ता जो उसका है वहां से शुरू करता है। और फरमा रहे हैं आप अजीजा ने मन क्या कुछ कहे जाना चाहिए, नुक्ता आगाज जो है वो पस्तरीन दर्जे से वो उसको शुरू करता है, ठीक है, शुरू किया उसने, फिर सुम्मा यारुजु इलैहि, फिर वो पस्तरीन नुक्ते से जो आगाज हुई है वो शय, उसके बाद है आम दफ इश्तियार जो अरूज एन रे जीम, इसके माने बुलंदी के हैं, लेकिन फिर इस इंतखाब की दाद दीजिए और भूल जाइए। कहा यह है कि फिर वो उस नुक्ता आगाज से वो शय बुलंदियों की तरफ चढ़ना शुरू करती है। दो बातें याद रखी, एक तो कुरान करीम ने कायनात के मुतल्लक खुदा के मुतल्लक कहा कि उसका ये जो निजाम है वो सिराते मुस्तकीम है, यानी सीधा रास्ता है, साइक्लिक ऑर्डर नहीं। आपको याद होगा मैंने एक दर्श में बताया कि हुक्म आए यूनान से लेकर आखिर तक वो कायनात के मुतल्लक कहते थे कि ये साइक्लिक ऑर्डर में गर्दिश कर रही है, यानी गर्दिश में तो ये है लेकिन आगे नहीं बढ़ रही, बल्कि किसी एक ही निजाम में एक चक्कर के अंदर गर्दिश कर रही है, जहां से शुरू हुई आखिर में वहीं जा पहुंचना है। कुरान कहता है लीन असर खुद आयरा, ये तो फिर बेकार सी बात है, गर्दिश दिए तेरे जाना किसी शायद वो आगे न बढ़े, उसने इसीलिए साइक्लिक ऑर्डर की बजाय सरात मुस्तकीम का है, सीधा रास्ता चलने वाला। तो एक चीज तो इसमें हो गई कि उसने आगे बढ़ना, लेकिन सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ना, वो जो है जारू जो है सीधा भी जाना है और बुलंद भी होते चले जाना है। अब इस बुलंदी के मुतल्लक लफ्ज आ जाए, जैसा मैंने कहा था ना कि तदब्बुर के मुतल्लक उसके अंदर खुद लफ्ज तदब्बुर में ये चीज मौजूद थी कि उस चीज का नुक्ता तकमील जो है उसको सामने रख के उस स्कीम को मुरतब करना। अब आइए ये शय अपने तस्करीन नुक्ता से आगे बढ़ रही है, वो तो सिराते मुस्तकीम है, आगे बढ़ रहा, लेकिन आगे ही नहीं बढ़ रही, या रुजू इलैहि, बुलंद हो रही है। और बुलंदी के लिए मैंने कहा कि दफ्त जहां ये जो मादा एन रे जीम है, अरूज जिसको हम कहते हैं आमतौर पर, इसके माने होता है सीढ़ियों की तरह ऊपर चढ़ना, बतदरीज बुलंद होना, ग्रेजुअली जाना, दर्जा ब दर्जा, दर्जा का लफ्जी सीढ़ी के एक डंडे को कहते हैं। लफ्ज अरूज जो है उसमें जरूरी है कि बुलंदियों की तरफ चढ़े, लेकिन मदारिज की रूह से चढ़े, इसीलिए ये मेराज सीढ़ी को कहते हैं। खुदा के मुतल्लिक जहां उसने कहा कि इन्ना रस्ते का इलाज सिरातम मुस्तकीम, तेरा खुदा खुद सिरात मुस्तकीम पे है, उसके साथ ही कहा वो जिन मारिज है, वो सीढ़ियों वाला खुदा है। अरे मान पूछो यूरोप के साइंटिस्ट से कि वो किस तरह झूमता है इन चीजों से। बुलंदियों सीधा भी जाती है वो शायद दायरे में गर्दिश नहीं करती, सीधा जाती है लेकिन उसी हमवार सतह के ऊपर वही नहीं रहती, सीधा जाती बल्कि साथ साथ ऊंचे चढ़ती जाती है, ऊंचे उबारे की तरह ऊंचे नहीं चढ़ती, हवाई जहाज की तरह फौरन ऊंचा नहीं चढ़ती, बल्कि वो बतदरीज मराहल तय करती हुई आगे बढ़ती है, ऊपर जाती है। जिल मआरिज है खुदा, रफीउ दरजात कहा है उसने अपने आप से। ये मैंने अर्ज किया ना कि ये जो सीढ़ी का एक एक डंडा होता है, जीना होता है, उसको दर्जा कहते हैं। तो गोया अरूज के लफ्ज के अंदर ये बात आ गई कि उसने बुलंदियों की तरफ जाना है लेकिन बतदरीज जाना है, या तो लफ्ज नहीं जाना है। एवोल्यूशन के तो माने ये है, इर्तिका तो है उसके अंदर, बुलंदियों की तरफ जाना तो है उसमें, बुलंद होना तो है उसमें, लेकिन वो यक लफ्ज जिस तरह से वजूद में नहीं आ गई थी अपनी आखिरी शक्ल में, नुक्ता आगाज में वजूद में आई और आहिस्ता आहिस्ता उसने तकमील तक पहुंचना है, इसी तरह से वो शह जो अपने तकमील तक पहुंचती है और उसको बुलंदियों की तरफ जाना कहा है, उरूज कहा है उसका, ये यक लख्त बुलंद नहीं हो जाती है बल्कि वो बतदरीज बुलंद होती चली जाती है। और वो जो मराहिल हैं जिसमें बतदरीज वो गुजरती है, फी यौमिन, यौ के माने यौम के माने मैंने बताए थे, पीरियड मरहला मंजिल, काना मिकदारहू अल्फ सनत मिम्मा तअद्दून, वो एक एक मरहला तुम्हारे हिसाब शुमार से हजार हजार साल का है, और दूसरी जगह है खमसीना अल्फा सनातिन, 70/4, 50-50 हजार साल का एक एक मरहला है, उसी का एक जीना तुम्हारे हिसाब शुमार से 50-50 हजार साल का है, जिसमें ये शय इस तरह से बतदरी बुलंद होती हुई उस नुक्ते तक पहुंचती है जो उस स्कीम में उसके लिए मुकर्रर किया गया था। अब बतदरीज जाना भी है, लफ्ज है इलाज, ये इलाज जो है किसी शय तक पहुंचने के लिए डायरेक्शन का होना निहायत जरूरी है, डायरेक्शन बड़ी अहम चीज है, सिंत का तयन होना वही सीधा रास्ता कहला सकता है, डायरेक्शन का। चेस्टर्टन ने एक जगह लिखा है, किताब है उसकी दी एसे ऑन हेरिटेज, वो कहता है कि ये दस जिसको तरक्की कहते हैं, जिसे प्रोग्रेस कहते हैं, ये बेमानी हो जाता है ता वक्त कि आप पहले डायरेक्शन का तयन ना करें, और डायरेक्शन बेमानी होती है ता वक्त कि आप डेस्टिनेशन या नक्सल एन का तयन ना करें। इलाज जो है डायरेक्शन है, किस सिमकिन तरफ डायरेक्शन है, किला है, एक हे ने ये बात सारी वाजिया कर दी कि वो आखिरी नुकता तकलील जो उसके लिए तय किया गया था इस शहर के आगे बढ़ने और बुलंद होने की डायरेक्शन जो है उस नुकता तकलील की तरफ ये उधर बुलंद होती हुई चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। इर्तिका इसीलिए हमारे यहाँ तरक्की के लिए लफ्ज कहा है, ये ठीक है, रफा के माने भी बुलंद होना है, लेकिन कुरान ने जो बुलंदी के लिए अरूज का लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, ये है जो सही तौर पे डिपिक्ट करता है इस चीज को कि उसने बुलंद होना है बतदरीज। साइंस की डिस्कवरीज ये कह रही है, कहती ये है जैसे मैंने अर्ज किया है, बाकी ये सियाह को छोड़िए, आगे चल के हम अभी आते हैं इंसान की तरफ। अगली आयत इंसान के मुतालिक है, नुक्ता या आगाज जो है, पहला दरसूमा जो है 22 फैल का, वहां से आगाज होता है इसका, इसकी तश्कील का। हजार हाँ साल में एक मरहला कहीं तय होता है आगे बढ़कर। इस आगे बढ़ने के लिए कुराने करीम ने यह बात कही है कि हर शय के लिए हरकत और जिद्दोजहद जरूरी है, जिंदा रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हरकत जरूरी है, सख्त कोशिश जरूरी है। इसलिए कि ये इर्तका का कुछ इस किस्म का सिलसिला है कि हर शय के रास्ते में मवानियात आते हैं, रुकावटें आती हैं, मुखालफतें होती हैं, उनके साथ टकराव होता है। जो शय ये साबित कर देती है कि उन टकराव के मुकाबले में वो उनसे गालिब आने की सलाहियत रखती है, वो जिंदा रहती है, और जब उस माने चीज को जो ऑब्स्टेकल रास्ते में है उसको वो तोड़ देती है तो एक कदम आगे बढ़ती है। इसे इर्तका कहते हैं। ये एवोल्यूशन की जो थ्योरी है उसकी बुनियाद है। वो ये कहते हैं ये पुराने जमाने के फॉसिल्स जो हैं, बर्फों में दबे हुए जमीन के नीचे से जो पिंजर निकले हैं, बड़े बड़े अजीम उल्जिस्सा जानवरों के, अफसानों के, और उसके बाद वो इस हिस्ट्री में बड़ी दिलचस्प हिस्ट्री है ये एवोल्यूशन की। वो बताते हैं कि कौन सी नाव ऐसी थी कि जिसने इसकी सलाहियत नहीं थी कि वो मुआनियात का मुकाबला कर सके, वो या तो वही फिसर के जानिब होके रह गई जिसे कुरान में जहीन या जहन्नम कहा, और या उसके ऊपर मौत वारद हो गई। तो ये फॉसिल जो है ये उन अशिया के हैं जिनमें आगे बढ़ने की सलाहियत नहीं रही। हरकत और जिद्दोजहद मवानियात के ऊपर गलबा पाने की सलाहियत जो नहीं थी, टकराव में आगे बढ़ने की सलाहियत नहीं थी, वो या जाने दोगे रह गई या खत्म हो गई। और जिनमें ये सलाहियत मौजूद थी वो हैं जो आगे बढ़ी। अरूज वो सीढ़ी का, वो जिसे हमारे यहाँ तो डंडा ही कहते हैं, जीना उसको कहा जाए असल में, कि वो एक डंडा उठे चढ़ गई जिनको, आगे बढ़ गई। मौजूद कुछ खुश होता जा रहा है, इसमें थोड़ी सी लताफत डालती है, और हमारे लिए तो ये लताफत और रानाइयों के लिए बड़ा जखीरा मौजूद है, इकबाल जो मौजूद है। गौर कीजिए ये शख्स जिसे बदकिस्मती थी हमारी के सिर्फ शायर मशरे की कह सके, ये इससे ज्यादा समझ ही नहीं सकते थे उसको। इर्तका जैसी एवोल्यूशन जैसी थ्योरी, शेरियत पहले देखिए कि इसके अंदर कितनी है, रंगीनियां, रानाइयां, दिलकशियां, दिलफरेबियां कितनी है, शेरियत कितनी है। मसला इतना मुश्किल है कि मैं नजर में बयान कर रहा हूं तो कह रहा हूं कि खुशी पैदा हो रही है। टकराव, हरकत, हरारत, जिद्दोजहद, और उसके बाद हर टकराव के बाद कामयाबी अगर हुई है तो एक कदम आगे बढ़ना। हयात छोला मिजाजो गजूर और शोर अंगेज, तो बात शुरू करता है। ये बांगे दरा में है, इर्तका इस नज़्म का उनवान है। इब्तदा तो उसने की है इससे कि सुतेजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, चरागे मुस्तफी से करारे बूलहबी। तामीरी कुवतों और तकरीबी कुवतों का टकराव चला आ रहा है शुरू से, तो आज नई बात नहीं, यही इर्तका है। लेकिन किस अजीन अंदाज से कहता है कि हयात छोला मिजाज हो, गजूर हो, शोर अंगेज, सरिश्त इसकी है मुश्किल कशी जफा तलबी। हयात यानी जहां जिंदगी है, जिंदगी की खसूसियत यह है, छोला मिजाज, हरारत है उसके अंदर, गजूर वाकई हुई है, बेहिम्मत बेहमियत वाकई नहीं हुई है, गुजदिल वाकई नहीं हुई है, शोर अंगेज वाकई हुई है, इसकी सरिश्त है मुश्किल कशी जफा तलबी, तलाश करके जफाओं को लिया, तलब करना तजस्सुस इसकी हो कि टकराव के बाद तो ये आगे नहीं बढ़ सकती। अब देखिए कैसे आगे बढ़ती है। सुकूत शाम से ता नगमा है सहरगाही, वहां से बात चली है अब रास्ते का ये मरहला आया है, सुकूत शाम से ताम नगमा ए सहर गाई, हजार मरहला आए सुबाने नीम कभी। और एक मिसरे में क्या कुछ कहा गया, कशा कशे जमो गर्म, सर्दी और गर्मी की कशाकश, तपो तराशो फराश, किस चीज में देखा के तीरा दुरू ताबा शीशाए हलबी, क्या रंग के पत्थर या रेत को आईना बनने के लिए किन किन मरलों में से गुजरना पड़ता है, कशा कशे जमो गर्मा तपो तराशो फराश, देखा के तीरा दुरू ताबा शीशाए हलबी, और मकाम बस्तो शिकस्तो पचारो सोजो कटी, किस चीज के लिए ये देखते हैं मराहल क्या गिना रहा है ये सब, मकाम बस्तो शिकस्तो पचारो सोजो कटी, म्याने कतराए नैसानो आतसे अनवी, कतराए नैसान मान तो समझने के लिए भी शरीयत की तारीफ सामने रखनी पड़ती। कहा यह गया है ना कि ये नैसान जो अबर बाहर का मौसम होता है वहाँ बारिश होती है तो एक कतरा ऐसा होता है, तो वो एक कतरा जो है उनके यहाँ तो सेब के अंदर वो कहते हैं ना ये सुबाना है, सेब के अंदर वो कतरा जाता है, सेब बंद कर देती है अपने अंदर उस कतरे को, फिर उसके अंदर वो हजार हजार मराहल गुजरने के बाद वो कतरा जो है अबर नैसान का ये कतरा वो गहर बन जाता है सेब के अंदर रहते हुए। किसने जो कहा है ना कि कतरा नैसा और शराब क्या कतरा, कतरा नैसा को शराब बनने के लिए इतने मरहलों में से गुजरने की जरूरत है, तो ये कतरा नैसा जो है वो शराब कैसे बनता है, बड़ा खूबसूरत शेर है ये, इन्होंने वहां से ये बात ली। वो कहता है ताकरा सर सब्ज कुन ऐ कतराए ऐ अबरे नैसाने बहार, नैसाने बहार के बादल तू ये अंगूर की जो बेल है इस पे बरस, सेब में बरसने से क्या फायदा, इस पे बरस कतरा घर मैं भी तवानद शुद्ध चिराग बाहर सुबह से, और ये तेरा एक कतरा अगर शराब बन जाए तो इसमें मोती बन के क्या लेना है, वहां जो अपने आप को जाया कर रहा है, तो मोती बना के अंगूर की बेल पे बरस तेरा कचरा शराब का क्या माता इन लोगों की। ये है वो कतरा नैसान जो इकबाल ने जहाँ कहा है, म्याने कतरा नैसान हाथ से नबी, आ गया फिर शायरी करता करता जो बात कहनी है, इसी कशा कशे तय हम से जिंदा है अकवाम, बात तो ये कहनी क्लिनिक में थोड़ा बात कर रहा, इसी कशा कशे तय हम से जिंदा है अकवाम, और यही है राजे तबो ताबे मिल्लते अरबी, शेर है आखिरी के मुगां इर्तफा का नचूर, मुगां के दानाए अंगूर आदमी साजन, शराब कशीद करने वाले जो अंगूर के दाने को तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद अंगूर के अंदर रस होता है, मिठास होती है, किरपता की पिछली मंजिल, वो जब तक टूटता नहीं अगली मंजिल में नहीं पहुंचता, टूटने के बाद जब अगली मंजिल में पहुंचता है तो वही उसका शीरा जो होता है वो शराब बन जाता है, इरपता की अगली मंजिल उसने तय कर दी, मुगा के दानाए अंगूर आद नीसा जंद पचली मुदादा हो, सितारा भी सिकनंद आफ्ताब नीसा जंद, बहुत फरमा रहे हैं तो फितरत ने इसको क्या सलाहियत दी थी, बात ये कर रहा है एवोल्यूशन की थियरी बयान कर रहा है, कुरान का ये जो आयत है कुरान की कि हयात में हरकत हरारत टकराव तकादम मवानियात पे गलबा पाने की सलाहियत हो तो हर टकराव के बाद अगला कदम पिछले कदम से आगे बढ़ता है ऊपर चढ़ता, मुगा के दाना है अंगूर आदमी सागम सितारा मीशिकनंद आस्तानी सागम सुम्मा यारो जो इलेह, मैंने कहा था ये इलेह एक एक दस हजार गौर फरमा रहे हैं, तदब्बर मैंने अर्ज किया, अमर कहा समा कहा अर्ज कहा, یارہ جو کہا الہ، الہ نے ڈائریکشن متعلق، الہ کے معنی ڈائریکشن ہو، ڈائریکشن وہ کہہ رہا ہے کیسے کر. اور بات سنی ہے کہ جب تک سامنے ڈیسٹینیشن نہ ہو، منزل متعین نہ ہو، اس وقت تک سمت بیکار ہے. اور ڈیسٹینیشن ہو اور سمت اس کی طرف نہ متعین کی گئی ہو، پھر بھی آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. صراط مستقیم اس لیے ضروری ہے کہ لے چلا ڈائریکشن. اسی لیے تدبر ہے نا، جو میں نے کہا تدبر کے معنی یہ ہے کہ آخری نقطۂ تکمیل کو سامنے رکھ کے کسی شے کی ابتدا کرنا. الہ ہر شے اس پروسیس سے، اس ذریعے سے اپنے اس ڈیسٹینیشن کی طرف چلی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بلند ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہے. ایک ایک مرحلہ اس کا پچاس پچاس ہزار سال کا. کہا یہ جو ہے یہ کون کر رہا ہے؟ ذالک عالم الغیب و شہادت العزیز الرحیم. کاش اس میں آ گئی عالم الغیب و شہادت. یہ غیب کیا ہے؟ یہ شہادت کیا ہے؟ جس شے کا بھی نقطۂ آغاز سے جو شے شروع ہوئی ہے، اس ایک بوند کے اندر، اس ایک نقطے کے اندر، وہ شے بننے کی پوٹینشیلٹیز یا ممکنات موجود ہیں. کس کے لیے اس کا آغاز ہوا؟ یہ چیز ابھی مشہور طور پر سامنے نہیں آئی، اس کی صلاحیتیں وہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں، مضمر ہیں. اس کو پوٹینشیلٹیز کہتے ہیں، جو ایکچوئلٹی میں نہ بھی آئی ہوئی ہوں بلکہ وہ کچھ بننے کی اس میں صلاحیت ہو. جب تک وہ صلاحیت مشہور نہیں ہوتی، محسوس طور پہ سامنے نہیں آتی، اسے غیب کہا جاتا ہے. کہا وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کسی شے میں بننے کی صلاحیت کیا ہے، اور شہادت کا بھی علم ہے کیا وہ بن گئی ہے، اس کا بھی اس کو علم ہے. اس نے آخر العمر کیا بننا ہے یہ بھی اسے پتا ہے، کتنا بن چکی ہے یہ بھی اس کو پتا ہے. اس لیے جب اس کو یہ معلوم ہے کہ جو یہ بن چکی ہے یہی نقطۂ آخری نہیں، اس کے لیے اس میں بہت کچھ ابھی بننے کی صلاحیتیں ہیں، تو وہ شے کو وہاں کھڑا نہیں رہنے دے گا، وہ اس کو چلائے گا آگے وہاں تک جہاں تک کہ یہ غیب مشہود نہ ہو جائے، غیب شہادت نہ بن جائے. عالم الغیب و شہادت العزیز الرحیم جہاں آیا، ورنہ عام طور پہ حکیم آیا کرتا ہے. عزیز کے معنی کہا کہ یہ کرنے کے لیے ایک ذرہ ناچیز کو پہاڑ بنانے کے لیے بڑے غلبے اور قوت کی ضرورت ہے، پھر ان کو اس طرح سے اس لائن کے اوپر چلانے کے لیے، ارتقاء کے راستے کے اوپر آگے لے جانے کے لیے بڑے قوت اور غلبے کی ضرورت ہے. تو خدا العزیز بھی ہے، لیکن اس کا غلبہ کاہے کے لیے؟ کیا بات ہے؟ جا رہی ہے رحیم سامانے نشوان ماں بہن پہنچانا بغیر کسی قسم کی کوشش اور کسی قسم کی سید آپ کی رحمت. اس کو کہتے ہیں ہر شے کو سامان نشوان ماں پہنچاتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کو اس ڈائریکشن کے اوپر چلانے کے لیے اس کے پاس قوت بھی موجود ہے. یہ اس خدا کی سکیم ہے جو اس طرح سے کار فرما ہے اس کائنات کے اندر. یہاں تک ہم نظریہ ارتقاء کے اس حصے تک پہنچے ہیں جو یورپ کے سائنسدانوں کا حال ہی میں ایجاد کر رہا ہے، ڈسکور کر رہا ہے، ایجاد غلط کہا میں نے، منکشف کر رہا ہے. یہاں تک ٹھیک ہے. اب اس مقام پہ پہنچنے کے بعد انہیں ایک بہت بڑی غلطی لگی، اور یہی وہ غلط نگہی ہے جس کی وجہ سے دنیا آج جہنم میں گرفتار. نظریہ ارتقاء میں انہوں نے حیوانات کو دیکھا کہ یہ جس موجودہ شکل میں کوئی حیوان موجود ہے وہ اس کی آخری منزل ہے، اس کے بعد آگے ارتقاء نہیں ہے. وہ نیچرل لاس جو ہیں، فزیکل لاس جو ہیں، طبیعی قوانین جو ہیں، ان کے ماتحت زندہ رہتا ہے، जिंदा रहने के बाद उन्हीं कवानीन के ताबे एक दिन खत्म हो जाता है, मर जाता है। और सिलसिला इर्तका की जंजीर की ये आखिरी कड़ी होती है हैवानात की जंजीर। यूरोप के इन मुतकसिन की गलत निगही ये थी, इन्होंने इंसान को भी इन्हीं हैवानात में से एक हैवान समझ लिया। शक्ल व सूरत या दिमाग के एतबार से उनसे जरा आगे बढ़ा हुआ, लेकिन इन्होंने इसको इंसान को उसी कैटेगरी के अंदर रखा। कहा यह कि इंसान की जिंदगी भी यही फिजिकल जिंदगी, तभी जिंदगी जिस्म की जिंदगी यही जिंदगी है। जिस तरह से दूसरे हैवानात आम कानून तबीयत के मुताबिक जिंदा रहते हैं, ये भी उसी तरह से खाता पीता सोता है, अफजाइश नफर करता है। जिस तरह से वो एक दिन तभी कवानीन के ताबे उनपे मौत आती है तो वो खत्म हो जाते हैं, इसी तरह से इंसान भी तभी कवानीन के मुताबिक जिंदा रहने के बाद उन्हीं कवानीन के मुताबिक एक दिन मर जाता है और उसके बाद ये खत्म हो जाता है। ये है वो जिसे मैंने गलत निधि ही कहा। छोटे लोगों की गलतियां कुछ छोटा सा असर पैदा करती हैं। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, दिमाग हो बहुत बड़ा, गर्दन हो टेढ़ी, तो वो जो उनके नतायज होते हैं वो बड़े ही जर्रसां और तबाहकुन होते हैं। बात इतनी सी थी उन मुफक्किरीन की कि उन्होंने इसे भी हैवानात के जमरे में शामिल कर दिया। और अब उसके बाद आप देखिए कि किसका पहले यूनिट समझिए, सोचिए कि नतीजा क्या हो। इंसान के मुतल्लिक कहा कि ये लॉ सिर्फ तभी है जिनके ताबे इसने जिंदगी बसर करनी है, इसके उनके आगे कोई बात नहीं है। इसने सिर्फ ये जिंदगी जीना है, इसके बाद और कुछ नहीं। अब इंसान के लिए जिंदगी का नस्बुल ऐन या मंजिल या डेस्टिनी तो आगे मौत, और हैवानात के मुकाबले में इसको कुव्वतें इतनी दी। मैंने कहा है कि वो जो शेर इतना बड़ा कुव्वत वाला दरिंदा हम महसूस है, उससे बड़ा हैवानात में समझिए कि कोई साबे कुव्वत नहीं। वो भी एक वक्त में किसी एक कमजोर हैवान को चीर फाड़ सकता है और क्या कर सकता है। ये कम वक्त तो हिरोशिमा के ऊपर एक बम गिरा देता है, और वो तो बात अभी बहुत पुरानी है कि एक शहर को तबाह करता है। अब तो ये कह रहा है कि अगला बम ऐसा भी आ सकता है जो कुर्रा अर्ज को तबाह करके रख देगा। जिंदगी हो आम हैवानों की, कुवतें हासिल हो इसको इसकी जिद, तो आप सोच लीजिए ना कि फिर हशर क्या होना हुआ आपस में। अब ये सारी कुवतें एक दूसरे इंसानों के खिलाफ सर्फ हो रही है, सर्फी यहाँ इसने करनी है, और तो कोई इसके सामने नस्बुल ऐन ही नहीं है, अगली मंजिल ही कोई नहीं, खात्मा हो गया यहाँ। तो इतनी कुव्वतों का मालिक जिसके सामने इस फिजिकल लाइफ के आगे कोई और मंजिल ही नहीं है, तो उसका नतीजा तो ये होना चाहिए जो कुछ हो रहा है। ये जिसे आप कहते हैं ना तहजीब मगरब में तबाहियां ले आई, और तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। तहजीब मगरब के मुतल्लिक आप देखते हैं, हम ही नहीं यूरोप वाले भी चिल्ला रहे हैं। तो जब तहजीब मगरब कहा जाता है ना, तो हमारे सामने तो यही आता है कि, और फिर हमें बताया ही जाता है आवाजों में और मंदिरों के अंदर कि जी वो देखिए ना, वो माफी अगर खड़े होकर पेशाब करते हैं और पतलून पहनते हैं और शेर कर लेते हैं, और फिर ज्यादा से ज्यादा ये कि शराब पीते हैं, नाच करते हैं, उनकी मेमें स्कर्ट पहनती हैं। यानी ये है तहजीब मगरब, दुनिया की तबाहियां इस वजह से आई हुई हैं। ये तहजीब नहीं होती। तहजीब जिंदगी के मुतल्लिक एक नजरिया होता है जिसके मुताबिक अपनी जिंदगी और माशरा और सियासत और मईशत तमाम इमारतें सवार होती हैं। वो बुनियादी नजरिया कॉन्सेप्ट लाइफ के मुतल्लिक, ये तहजीब मगरब जिसकी तबाहियां हम बना रहे हैं वो ये कॉन्सेप्ट है लाइफ का। तो इंसान की जिंदगी भी एक हैवान की जिंदगी है, तभी मौत मरने के बाद और कुछ नहीं रहता, यही की जिंदगी है। तो लाफ जंगल तो होना हुआ हैवान की तरह जो हुआ, जिसकी लाठी जिसकी भैंस जो भी कुवत हासिल कर दे किसी तरह से, वो जो जीने आए बाकी इंसानों पे करता चला जाए। ये जो नजरिया है यूरोप की जिंदगी का, जिंदगी के मुताबिक यूरोप का, ये सारे मजाहर इस नजरिए के नतायज हैं, ये इसकी शाखें हैं, ये है असल शय जिसे ताजीद मगरब की बुनियाद कहेंगे। यही कहने वाला जिसने 1905-06 में कहा था, तुम्हारी ताजीब अपने खंजर से आप ही खुद खुशी करेगी। उस जमाने में अजीजा ने ना नबी 28-30 साल का नौजवान यूरोप में तारीम हो रही थी उसकी, वहां से खुद जाके मुशाहदा करके इस ताजीब का, तो उसने ये नहीं देखा कि स्कर्ट पहनती है और ये नाच करती है, उसने देखा ये कि जिंदगी का जो तसव्वुर इन लोगों ने अपने जहन में रखा उसका नतीजा क्या हो, अपने खंजर से आप ही खुद खुशी करेगी। इसलिए कि जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा ना उस तरह हो, और यही फिर आखिर में यहाँ आने के तमाम इस ताजीर के मासिल का, इसके नतायज का मुशाहदा करने के बाद यूरोप आज शमशीर खुद बिस्मिल कतार बात यही कहता है, यहाँ बताता है क्यों हुआ, अपनी तलवार से आप ही बिस्मिल हो गया यूरोप। जेरे गर्दू रस्म नादीनी निहार, उसने इस आसमान के नीचे ये दादीनी एक लक्ष्य लाया। अब यहाँ से पता चलता है कि दीन क्या होता है और दादीनी किसे कहते हैं। रस्म दादीनी निहार, क्या थी वो रस्म दादीनी? दर निगाहश आदमी आबो गिलस, उसने कहा कि ये आदमी भी यही पानी और मिट्टी से जिस तरह से और हवान बने हुए हैं, बस यही है। उसने लादीनी देखिए क्या है, नर्देगाश आदमी आबो गिलस, और अगली बात है कारवाने जिंदगी बेमंजलस, कारवाने जिंदगी बेमंजलस, ये है लादीनी। मंजिल मुतय्यन हो तो वो दीन है, वहां से ये देखा जाएगा पहली बात के मंजिल है क्या है, लेकिन मंजिल का मुतय्यन होना तो जरा जरूरी है ना। कारवाने जिंदगी बेमंजलस, कुवतें इतनी, आदमी आबोगिलस, कारवाने जिंदगी बेमंजिल, ये है लादीनी अजीजा ने। मैं एक मिनट सोच ये रहा हूँ कि अगली कड़ी कहाँ से शुरू करें, अगली कड़ी मुझे शुरू कर देनी चाहिए यहीं से। इसके बरक्स कुरान की ये स्कीम जो शुरू हुई थी नुक्ताए सब तरीन नुक्ते से और ये बढ़ती चली आ रही थी, कुरान ने उसके मुतल्लक इंसान की बाबत क्या कहा, वो पहले जो था वो खारजी कायनात के मुतल्लक कि वो इस तरह से चली आ रही है, और उसके बाद इलाहे जो कहा था वो यही है कि जो उसके लिए हमने नुक्ता तकमील मुतकर्र किया था हर शहर वहां तक चली आ रही है। आम की गुठली के अंदर पोटेंशियलिटी क्या है कि वो एक पौधा उगे फिर दरख्त बने फिर उसमें ये पोचे आए फिर उसके अंदर आम लगे, आम जब लग जाए तो ये उसकी इंतहा है उसकी मंजिल, वो पहुंच गई अपने आखिरी मंजिल का किले ही। चीन ने यही उसके लिए रखा था, शेर का मजबूल एहन था कि शेर बन जाए बच्चा पैदा करे शेर का, शेर का बच्चा अब खुद बगैर किसी तालीम तरबियत के किसी स्कूल कॉलेज में गए बगैर, ना ही उसकी तरफ कोई रसूल आता है ना कोई किताब आती है ना किसी मदरसे में आता जाता है, वो आज खुद अपनी नुक्ता तकमील तक पहुंच के शेर बन जाता है, लेकिन बस शेर ही बनता है इससे आगे कुछ नहीं होता। 10-12 साल पहले भी वो शेर का बच्चा शेर बन के खत्म हो जाता था, आज भी वो वहां पहुंच के खत्म हो जाता, उसके लिए नुक्ता तकमील ही ये है आगे नहीं है, कहा कि इसके नातहत आगे चलिए। अब हम आयत साहब से आ गए और ये अगली आयत है जो बता रही है दीन के, ये आयत इंसान को हैवानात के जुमरे से निकाल के मंजिल इर्तका की दूसरी मंजिल में पहुंचा रही है। अल्लाह जी अहसना कुल्ला शैन खलका हूँ, कहा वो खुदा है कि जिसने वैसे तो हर शय को हसीन मासूम तरीन अंदाज में पैदा किया, जो चीज भी उसके लिए मौजूद करी थी तवाजुन कायम रखते हुए उसका बैलेंस काम आसन हर शय को इस तरह से पैदा किया, ये बात नहीं है कि उसने ये बाकी कायनात जो थी बाकी चीजें जी इसलिए ठेके से बनवा लिया कि सिख को जिसमें ये मर्जी बना दे ते आप बंदा बना रहा फिर जरा सरदार जी ने कहा वाह गुरु यह बंदे बना सरदार जी ने मिल गया जंगल अजीब जी शकल से डरिया थोड़ा जहा कह लगा तुम कौन हो जी कह लगा मैं वाह गुरु कहना तू कौन है मैं चित्र खाऊ नफा सिंह की करना हूं मैं गड्ढे बनाना हूं कुछ लगा वाह गुरु तुम की करते होंगे आगे कह लगे कि मैं बंदे बनाना हूं कह लगा ए बना शर्म नहीं आनी ये बात नहीं कि उसने बाकी खारजी कायनात जो थी उसको जैसा कहा ठेके से बनवा लिया अल्लाह जी ऐसा ना कुल्ला शहर में खड़ा कर अपनी अपनी जगह हर शहर एक आसन तस्वीर में है हर शहर में एक खास इतहाल है ये हुस्न है उसके अंदर और आगे ये शहर के मुतल्लिक कहा है अभी क्या बात है कुरान की व बदा खलकल इंसान मिन तीन इंसान की जो तकलीफ की इब्तिदा हुई है वो भी इन बाकी हैवानात की तरह जमादात से ही हुई है गैर नामी मादे से हुई है बेजान मादे से इब्तिदा हुई है। अब मैं बीच के मराहल नहीं यहाँ गिनाऊंगा कि फिर बात दूसरी तरफ चली जाएगी। ये नजरिया इर्तका बता रहा है कुरान ने दीगर मुकामात में बताया है कि जिन जिन मनाजल में से ये हवानात गुजरे हैं उन्हीं मनाजल में से इंसान का बच्चा जमीन रहने मादर तक गुजरता है। बदा खलकल इंसान मिन तीन सुम्मा जाला नस्लहू मिन सुलालत मिन माइन महीन फिर वो मनाजल तय करता हुआ उसको ले आता है उस मंजिल में जहाँ इसकी इफ़्ज़ाइश ये मुन्नस औरत और मर्द के इख्तलाफ से होती हैवानात का काम वहाँ भी यही होता लेकिन इसके बाद उसने कहा है कि इसके बाद इसको कुरान का क्यों ना नहीं यहीं से तो बात मुख्तलिफ होती है यहाँ से तो गाड़ी दूसरी पटरी पे पड़ती है यहाँ से तो इंसानियत शुरू होती है यहीं से दीन शुरू होता है यहाँ से जरूरत रही की और रसूल की और अदायत की शुरू होती है किसी एक नुकता से। हाँ 23:14 बात वहाँ से शुरू कर रहा है वलकद खलकना इंसान मिन सुलालत मिन तीन सुम्मा जालना हु नुत्फतन फी क़रारिन मकीन और मनाजिल है उसका फिर ये अलका बनाया अलकमा बना अलका बनाया मुज़ा बनाया तो ये जिस तरह से जमीन देन मादरे सारे जहाँ मरहले गिनाए हुए हैं मैं छोड़ता हूँ इनको कि ये हैवानात में और इंसानी बच्चे में मुश्तरक है। कहता है यहाँ तक उसको बनाने के बाद हैवान का बच्चा जो था उसको तो इसी चीज पे छोड़ दिया कि ये उसका आखिरी नुकता था इंसान की सूरत में सुम्मा अंशा ना हो खलकन आखरा और यहाँ पहुँचने के बाद उसको एक दूसरी तरह की मखलूक बना दिया खलकन आखरा कह के क्या बात क्या फतबारक अल्लाह हो आसन यहाँ आने के बाद एक कैसे होता है ना एक आर्टिस्ट अपने साकार को पेश करने के बाद उसको थोड़ी सी ये बरकत वाली बात लेता है तहसीन वाली बात एप्रिसिएशन वाली बात कहता है खलक आखर दूसरी जगह खलक जदीद दिखा इसके मुतल्लिक उसने ये कहा है कि वक़्त खलक है तुम अतवारन अतवारन उसके बाद ये इंसान जब वक्त इंसान नहीं बन गया है ये दर्जा बदर्जा अब अतवार का तर्जमा टौर जो है बड़ा जामिया लफ्ज है दीजिएगा बदल चाहे ये खलकन आखरा भी इसमें आएगा कुछ और बन जाना बदले कुछ ऐसे तौर से बेतौर हो गए तुम तो शबाब आते ही कुछ और हो गए खलकन आखरा कुछ और हो गए ये है जामियत बताया नहीं क्या है कुछ और हो गए ये अतवारन होता है कि अगला जो तौर है जैसे उसमें तौर से तौर हो गया ये अगला तौर जो है उसका इंसान का कहा वो खलकन आखरा है पहला जो सिलसिला चला आ रहा था ना तकलीफ का ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है कुछ और हो गए अच्छा जरूरत अंदाज है इसे कुछ और हो गया ये अल्लाह का तुम अतवार क्या हुआ यहाँ आगे ये खल दूसरी तकलीफ ही नहीं सुम्मा सब्बाहू, यहाँ तक हैवान तक मुशरक लाने के बाद क्या बात है सब्बा। तकलीफ के मराहल में कुरान ने अपने आप को कहा है ना, खालिकुल बारीउल मुसव्वर, खालिक तो जैसा मैंने मिसाल के तौर पे बताया था, कुम्हार जो चाक पे बैठा हुआ होता है, चाक तो निकल लेता है, उसके पास मिट्टी का थोड़ा सुंदा चौदह जी से कहती है, बस ऐसे बोलने मिट्टी जो रखी हुई होती है, उसने अपनी स्कीम के मातहत उसमें से बदली बनाना होता है, सुराही बनाना होता है, प्याला बनाना होता है, तो सबके लिए वो उसी किस्म की मिट्टी होती है जिसे आपके ऊपर यूं थप थप के रख देता है, फिर क्या करता है? ये तो है खालिक बनाने वाला, वो उसमें से घुमाता है, आपने अगर कभी देखा हो तो उसमें से बहुत सी मिट्टी को वो छांटता चला जाता है, तराशता चला जाता है, तराशता चला जाता है, अलग करता चला जाता है, इसको बारी कहते हैं। अगला दर्जा उसकी तकलीफ का बारी है। किसी को सवाहन कहते हैं कि जो हसबो गवायद उसमें हो ना, उनको अलग करता चला जाता है, अलग करने के बाद मुसव्वरों फिर वो फार्म देता है उसको, जिस फार्म में उसको जाना मकसूद होता है, प्याला बना देता है, सुराही बना देता है, कहता है सुम्मा सवाहु, फिर हमने उसके हसबो गवायद को अलग करके एक खास इतबाल पैदा किया, और यहाँ है वो चीज जहाँ नुक्ता किस तरह आता है, पटरी बदलती है हैवान से, नफ़ाखा भी है मिन रूह ही, ये चीज जिसे कहते हैं कि इंसान की रूह जो है वो रूह खुदाबंदी का एक हिस्सा है, ये बड़ा गलत है, कुरान के खिलाफ तसव्वुर है, उसका कोई हिस्सा अगर वो अपने में से जो भी उसे कह दीजिए अपनी जात या अपना रूह, उसमें से जरा जरा सा भी इंसानों को देना शुरू कर दें, दुद्ध दम उग गया है उनका, यही अल्लाह ने भी देन लग जाता है, और छोड़ दीजिए इस बात में आपको खत्म होता है, जिस कुल की कैफियत हो कि उसमें से एक जर्रा बराबर भी अलग हो जाए तो नाकस तो हो गया, वो कोई जात अपना कोई हिस्सा नहीं दूसरे को है, जात एक इनडिविजिबल होल होती है, ना काबिले तकसीम वहादत होती है, उसके हिस्से बखरे नहीं होते, उसमें से कोई चीज वो कुछ नहीं लेते, ये रूह का जो लफ्ज हमारे यहाँ इस्तेमाल है ये इसका मसूनी अरबी जुबान में ये नहीं, रूह हमारे यहाँ सोल या स्पिरिट तो कहते हैं, रूह इंसान की फिर मर जाता है तो रूह कहते हैं निकल गई चली गई, फिर मसले पैदा हुए कि फिर रूह रहती कहाँ है, इसलिए नहीं फिर उसके क्या सामने घड़े गए, ये रूह इस माने में है ही नहीं कुरान के अंदर, इंसान की रूह का लफ्ज ही कुरान में नहीं, अजीब बात है, ये कंसेप्ट ही नहीं, तवानाई है, क्या है वो तवानाई जिसे कुरान ने रूह कहा है, अभी आगे बात कर दे, एक चीज है जो कायनात में ऊपर खुदा को हासिल है और नीचे कायनात में इंसान के सिवा किसी और को हासिल नहीं है, और वो है इसका साहिब इरादा होना, साहिब इख्तियार होना, चॉइस जो इसको दिया गया है, दूसरी जगह यही कहने के बाद कहा है कि वह हदैना उन नजदैन, हमने जो इसको अपनी तवानाई में से एक तवानाई बख्शी वो ये था कि दो रास्ते इसको दिखा दिए, हैवानात में से किसी को दो रास्ते नहीं दिखा, एक ही रास्ता उनके लिए मुतय्यन है, वो उस पर चलने के लिए मजबूर है, ये जो माँ ये शाह या नंग शाह है ना कि हम अपने अख्तियार के मुताबिक ये करते हैं हम वो करते हैं, सारे कुरान में खुदा के लिए और उसके नीचे इंसान से कहा गया है कि मदू माशे तुम्हारी भी एक मशीयत है, मादूद दायरे में ही सही, हमारी मशीयत हमारे बड़े वसी दायरे में है, तुम्हारी मशीयत भी तुम्हारे दायरे में है, हम अपनी मशीयत के मुताबिक काम करते हैं तुम अपनी मशीयत के मुताबिक काम करते हैं, ये है वो खुदा की रूह जिसे कहा जाता है, साहिब मशीयत होना, साहिब इरादा होना, साहिब इख्तियार होना, दो रास्तों में से एक अख्तियार करना दूसरे को छोड़ देना, बहुत बड़ी चीज है ये जो मिली है साहिब इंसान, ये है खुदाबंदी डिवाइन एनर्जी, ये तवानाई के माने में इस्तेमाल होता है, ये बस उसने अपना अपनी ये जो तवानाई थी खसूसियत कुबरा थी माँ के साथ उसमें से कुछ इसका इष्ट दिया और इसके लिए क्या किया फिर जायला सम सारा जिसको यह हवासे खम्फा जिसे कहते हैं सेंसेस जिसे कहते हैं देखने की सुनने की आमतौर पर यही कुरान गिनाता है इनको ये सलाहियतें भी देखने सुनने की सलाहियतें तो हैवानात में भी थी लेकिन आगे एक और सलाहियत थी जो वो नफा का सीए दुए ही की खसूसियत थी वो क्या थी वल अफेदा फिर एक ऐसी शय भी दी कि जो फैसला करती है इरादा करती है चॉइस है उसके लिए फैसला कौन की हैवानात के सामने तो दो रास्ते नहीं इसलिए फैसले का सवाल नहीं पैदा होता इसके लिए कहा कि तुम्हें ये समा और बसर ये चीजें दी हैवानात को भी दी वो भी सुनते हैं देखते हैं लेकिन अगली चीज जो है कि जो कुछ वो सुनते हैं देखते हैं बाहर से जो इतलात उन तक पहुंचती है उसके बाद वो एक फैसला करते हैं फैसला करने की चीज अब इसके लिए अभी तक हमारी जुबान तो एक तरफ रही अंग्रेजी जुबान में भी अभी तक कोई लफ्ज नहीं उनके लिए वाजिया कि फैसला तुम कुवत क्या है माइंड एक लफ्ज उन्होंने इसके लिए वजह किया था वो आगे चल के वो माइंड जो है जब उससे मैंने कहा जाता है कि जब उससे एडजेक्टिव उन्होंने मेंटल बनाया तो वो मेंटल हॉस्पिटल उसका ताल्लुक दिमाग से हो गया दिमाग की बात नहीं है कुवत इरादा कुरान ने तो इसको नफ्स ही कहा है जात कहा जाता है पर्सनैलिटी कहा जाता है कोई शय जो उसके बाद फैसला करती है इसके लिए और यही फैसला कुन कुवत है जो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी जिम्मेदारियों का तयन करती है क्योंकि इसने खुद फैसला किया है शेर अगर किसी अपने किसी दूसरे आवाम को तीर फाड़ के खा जाता है गुनाह नहीं करता जुर्म नहीं करता वो तो उसकी जरूरत का मुताबिक फितरत के अंदर इंसान जब दो रास्तों में से एक अख्तियार करता है जी चाहता है तो उसको शूट कर देता है जी चाहता है तो उसको माफ कर देता है ये खुदाई चीज है ये जो फैसला करने वाली चीज है कहा ये है जो इंसान को इससे ज्यादा और यहां फिर एक नुक्ता देगी बदा खलकल इंसान मिन तीन इब्तदा उसी तरह से जामिद मादा से सुम्मा जाला नस्ला हूं काश आपके सामने थे कुरान का वर्ष नस्ला हूं ये थर्ड पर्सन है गायब की जमीर है उसकी नस्ल फिर इस तरह से इख्तलात से आगे बढ़ाई यानी ये उसकी बात हो रही है किसी की सुम्मा सवा हो फिर उसने हसबो जवायद अलग किए नफाका की है फिर उसमें हमने ये तवानाई फूंकी और जब तवानाई फूंकी अजीजा ने मन सोचिए समझिए झूमिए जाला लाकुम और तुम्हें हमने इंसान बना दिया जहां हो की जगह तुम आया है जमीर मुखातब की आई है सेकंड पर्सन है अब ये मुखातब करने के काबिल हो गया जिन कायनात में किसी दूसरी शायद खुदा ने मुखातब नहीं किया था जाला लाकुम सारी आयतों में वो चला आ रहा है थर्ड पर्सन चला आ रहा है अभी ये इस काबिल नहीं था इसको मुखातब किया जाता अब ये इस काबिल हो गया इसको मुखातब किया जाए जाला ये है असल शायद तुम कह के इसको पुकारा गया तखातब के काबिल हो कहां मैं कहां ये मकाम सब खुदा किसी को मुखातिब करके बुलाए कोई तो छोटी बात है ये छोटा सा हाकम जो है अगर आए तलब अगर किसी को मुखातिब करता है तो पूछिए नहीं वो कहाँ आसमान जो करता है खुदा तुम कह के बुलाते हम भी खुदा को मुखातिब करते लेकिन एक बात मार्टिन लूथर है तलब है तो वो यहूदी बहुत उसकी एक किताब ही है उसका नाम है आई एम बाइबल उसने कहा है कि तुम खुदा को कहते हो कि तू ये कार तेरे लिए ये मुखातब करके उसने कहा है कि वो सुनूंगा। वही शख्स किसी को तू कह सकता है जो अपने आप को पहले मैं कहे। जिसका मैं साबित नहीं है उसको हक नहीं दूसरे को तू कहे। कायनात की कोई शय अपने आप को मैं नहीं कह सकती, इसलिए वो खुदा को तू नहीं कह सकती। इंसान ये कह सकता है बशर्ते के नफाकत ये मिन रूही जो है उसका ये हामिल हो, तब क्योंकि यहाँ पहुंच के उसने इसको हुक्म कहा था। अगर ये चीज नहीं है उसके अंदर, ये तवानाई उसके अंदर नहीं, इसको एक्सरसाइज नहीं वो करता, शायद इरादा नहीं है, फैसले अपने लेने आप लेने के काबिल नहीं है, तो वो कुम कहने के काबिल नहीं है। और जिसे कुम नहीं कहा जा सकता उसको हक नहीं है कि वो खुदा को मुखातिब करे। ये क्यों हम लाखों की तादाद के अंदर उसको पुकारते हैं, उसको क्यों कहते हैं, वो क्यों नहीं हमारी बात सुनता? इसलिए कि वो कहता है पहले अपने आप को मैं तो साबित करो, फिर तुम्हें हक पहुंचेगा हमें मुखातिब करो। तुम मैं नहीं हो तो हमें क्या मुखातिब करो, इसलिए वो नहीं सुनता तुम्हारी बात। मैंने कहा था कि इलाहे से उसने सिमत का तयन किया, सिमत का तयन किया है उसने, अशियाए कायनात के लिए उसने यही कहा है कि उस सिमत के अंदर जो सिमत मुतय्यन थी वो है डेस्टिनेशन उसका, वो डायरेक्शन उस तरफ उसको ले जा रही है, बस वहीं खत्म कर देती है। इंसान के मुतल्लिक क्या कहा, गौर से सुनिए, अजीजा ने मान कहा डायरेक्शन हम तुम्हें दे रहे हैं, किस मंजिल तुम्हारी क्या है, रब्बे कल मुंतहा, तुम्हारा मुंतहा जो है तुम्हारी डेस्टिनेशन जो है तुम्हारी मंजिल जो है खुदा है। किसी मकाम के ऊपर जाके ये ठहर सकता है, इला रब्बे का मुंतहा। शोला है दर वीर जब दर हसो खा खा के मन, हाँ एक बिगड़ा एक बस जो बोल दिया है रूमी का नाम लेता है उसने जो हसो खाशात जो था ये दुनिया का मेरे सामने फूक के रख दिया। जब उसने कहा मुर्शिद रूमी के गुफ मंजिल माँ किब्रियास, मोमिन इससे बड़े कहीं ठहरता ही नहीं है, अजीजा ने ठहरता ही नहीं है इससे बड़े। लेकिन जहाँ फिर बड़ी चीज है किला रब्बे का मुंतहा। कुरान यूरोप के साइंटिस्ट ने गलती की कि उसने कहा कि ये हैवान ही है, मौत से खात्मा हो जाता है, एक एक्सपेरिमेंट पे चला गया। हमारे यहाँ के तसव्वुफ ने गलती ये की कि उसने कहा कि इंसान का मुंतहा ये है कि वो अपनी जात को खुदा की जात में जाके मुर्दम करके खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। यहाँ भी वो खत्म हो गया, ये यूं खत्म हो गया, इनके यहाँ यूं खत्म हो गया, मैं न यहाँ रही न मैं वहां रही। कुरान ने फी रब्बे का मुंतहा नहीं कहा कि तुम्हारा मुंतहा खुदा के अंदर है, सिमत भी है इला रब्बे का मुंतहा है, बंदा है मौला सिफात, सिफात खुदाबंदी अपने अंदर मुंतसर अपने अंदर मुनाकस करते चले जाइए। खुदा के अंदर जाके जज्ब हो जाना फना हो जाना ये गैर पुरानी तसव्वुफ था, वादत वजूद का तसव्वुफ था, यहूदियों का तसव्वुफ था, ईसाइयों का तसव्वुफ था, हिंदुओं का तसव्वुफ था, वेदांत का तसव्वुफ था, कुरान का तसव्वुफ नहीं है। कुरान का मुंतहा बखुद मोकम गुजार अंदर हजूरश मशाल नापैद अंदर बहर दूरश, खुदा के सामने खड़ा होकर जो तुम मैं कहे अपने आप को ये है तेरी मंजिल, लेकिन उसकी सिफात अपने अंदर पैदा करता चला जाए क्योंकि उसने अपनी एक रूह का शिमला तुम्हें दिया हुआ। अब यहां से अजीजा ने मान मगरब और इस्लाम या कुरान दो मुख्तलिफ रास्तों के ऊपर जाते हैं, ये वो कांटा बदला गाड़ी में कि ये और रुख के ऊपर जा, इसकी सिमत अब दूसरी मुतय्यर हो गई, आगे चली गई। ये सिमत जो है इसने इंसानियत को अपनी मजीद इर्तकाई मनाजल तय करने के लिए क्या करना होगा, किन मंजिलों में से गुजरना होगा, इस तरह से गुजरना होगा, ये सारा कुछ है जो कुरान देता है। किसी का नाम अब दीन है, किसी को अल इस्लाम कहते हैं, लेकिन इसके लिए अगर बात मैंने छेड़ दी तो वक्त नहीं है। इस हिस्से को हम आइंदा दर्श छोड़ देते हैं। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्ना तस्लीम। किसी तरह से मैं फिर गुजारिश करूंगा कि आज की तरह वक्त के ऊपर आ जाइएगा, बात यहाँ से नई शुरू होगी और यहाँ से तो अब दिन शुरू होगा, आप इंसान की मंजिल मकसूद शुरू होगी और वो ये कि वो कैसे हासिल की जाएगी, क्या कुरान ने प्रोग्राम उसके लिए दिए। तकबिल